चलते हैं अपने इंशाल्लाह नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो हमारा सीरीज का सेगमेंट है, और इंशाल्लाह ताला हम आज देखेंगे कि हम इसमें क्या सीखते हैं।
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
हमने आंखों से देखा नहीं है मगर हमने आंखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है जिसने लाकर कलामे इलाही दिया जिसने लाकर कलामे इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है।
चलती हैं मक्का की गलियों में और आज देखते हैं कि वहां हमें क्या हालात नजर आते हैं। ताइफ में कयाम के दिन गुजरते जा रहे थे। हर सुबह मेरे नबी निकल खड़े होते, लोगों को तबलीग करते, दावत देते, एक अल्लाह की तरफ बुलाते। किसी दिन बाजार में जाते और वहां दावत देते, किसी दिन किसी सरदार के यहाँ जाते या बड़े आदमी के घर जाते और उनको अल्लाह का पैगाम सुनाते। मगर क्या बात थी कि तकरीबन 10 दिन गुजरने को आ गए थे और एक आदमी भी ऐसा नहीं था जो मानने को तैयार हुआ हो। सभी इनकार की रविश पर थे। एक दिन तो इंतहा हो गई। मैंने देखा मेरे नबी एक जगह पर वाज करने के लिए खड़े हुए तो इन लोगों ने उनको इतनी शदीद तकलीफ दी कि मेरे नबी को शदीद चोटें आ गई। हत्ता के हाल ये हो गया कि मेरे नबी गिर पड़े और बेहोश हो गए। मुझसे ये मंजर देखा नहीं जा रहा था। मैं दौड़ के आगे बढ़ी मगर मैं देख रही थी यहाँ पे किसी के दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं। क्या हो गया इन लोगों को? इन्होंने तो आज वो सलूक किया कि ऐसा तो मुशरिकी ने मक्का ने भी कभी नहीं किया था। जैद ने मेरे नबी को होश में लाने की कोशिश की मगर वो होश में नहीं आ रहे थे। तब उन्होंने मेरे नबी को अपनी कमर पर उठा लिया और तेज तेज चलते हुए आबादी से बाहर निकल गए। वहां जाके डाला, चेहरे पर पानी के छींटे मारे, तब आपको होश आया। ताइफ में इन तमाम तकालीफ के बावजूद मेरे नबी फिर भी हिम्मत नहीं हार रहे थे, अपना पैगाम दिए चले जा रहे थे। मगर लोगों के सख्त रवैये, उनकी संगदिली कम होने का नाम नहीं ले रही थी। इससे मेरे नबी के दिल पर क्या गुजरती होगी कि कोई एक भी नहीं मान रहा। और फिर सितम ये कि अब उनको ये लग रहा था कि कहीं हमारे नौजवान इनकी तरफ मायल ना हो जाए, कहीं वो इनका पैगाम कबूल ना कर ले। लिहाजा आखिर उन्होंने कह ही दिया, ए मोहम्मद, हमारे शहर से निकल जा और वहां जा जहां तेरा कोई सुनने वाला हो। किसी ने तो ये तक ताना दे दिया, अरे तेरे तो अपने लोगों ने तेरी बात कबूल ना की, तो अब हमारे पास क्यों चला आया? अल्लाह की कसम, हम तो तेरे लोगों से भी ज्यादा सख्त हैं। हम तेरी बात को रद्द करते हैं और तेरा इनकार करते हैं, और तेरे साथ हम वो सलूक करेंगे। तूने क्या समझ रखा है? मेरे नबी ने कोई जवाब ना दिया, सिर्फ सर झुका लिया। और मेरा दिल गम से फटा जा रहा था, इस कदर तहकीर, इस कदर जिल्लत आमेज सलूक। इनमें खुदा का खौफ नहीं? मेरे मुंह से उनके लिए बद्दुआएं निकलने लगी, इसलिए कि मैं तो अपने जमाने में यही किया करती थी। जब भी बेबस हो जाती तो आखिरी हरबा एक मजलूम के पास और क्या रह जाता है। लेकिन हैरत थी कि मेरे नबी के लबों पर कोई बद्दुआ नहीं आई। ऐसी बातें सुन के भी उनकी जुबान से कोई नारवा बात निकलनी ही नहीं, वो बस खामोश रहते थे। लोगों से ये बातें सुन के वो पलटे और जैद के साथ वापसी के लिए पैदल ही चल पड़े जैसे आए थे। मगर यूं लगता था इन शरपसंदों को चैन आने वाला नहीं, ये सिर्फ यहां तक रुकने वाले नहीं। इनके बड़ों ने लड़कों से और गुलामों से कहा, जाओ इनके पीछे और ऐसा सबक सिखाओ कि दोबारा यहां का रुख करने का ना सोचे। इन शरीर लड़कों को और क्या चाहिए था? इनके साथ इलाके के दूसरे अबाश भी मिल गए और मेरे नबी के पीछे पीछे चलने लगे, हूटिंग करने लगे, आवाजें कसने लगे, गंदी गालियां देने लगे। वो मुंह से जो बोल रहे थे मुझसे सुना भी नहीं जा रहा था। मैंने अपने कानों पे अपने हाथ रख लिए, मेरा दिल मुंह को आ रहा था, आज जमीन फट क्यों नहीं जाती कि मैं उसमें चली जाऊं। मैं ये सब नहीं देख सकती। मेरे नबी और जैद आगे आगे और वो बाशों का एक पूरा जत्था शोर मचाता हुआ, सीटियां बजाता हुआ, बुरा भला कहता हुआ इनके पीछे पीछे चलता जा रहा था। ये लोग हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, और यूं लगता था एक तमाशा है जो इनके हाथ लग गया। दूसरी तरफ मेरे नबी ने चुप सादी ली थी और पलट कर एक जवाब भी नहीं दे रहे थे, बस खामोशी से चलते जा रहे थे। और वो लोग भी पलट कर नहीं दे रहे थे, ऐसे पीछे लगे कि लगता था वापसी का रास्ता ही भूल गए। मुझे इन लोगों के तेवर कुछ सही नहीं लग रहे थे। एक मॉब इकट्ठा होने लग गया था, एक तरफ ये दो अफराद और दूसरी तरफ इतने सारे बदमाश गैंगा पुए वे इनको फॉलो कर रहे। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, मैं कहां से मदद के लिए किसको पुकारूं, मैं किधर भाग के चली जाऊं, मैं किधर कॉल करूं। कोई पुलिस नहीं, कोई हमदर्द नहीं, कोई हाल पूछने वाला नहीं, कोई कुंबा कबीला नहीं, कोई दोस्त अहबाब नहीं। परदेश और उसके अंदर इन लोगों के हत्थे चढ़ जाना मुझे परेशानी के आलम में समझ नहीं आ रही थी। मैं कैसे मदद करूं? इतने में उनमें से एक बदबख्त ने जमीन से पत्थर उठाया और मेरे नबी की तरफ तान के इस जोर से मारा कि वो सीधा उनके जिस्म पे जा लगा। खून का एक फव्वारा फूट पड़ा। मैं तो जहां खड़ी थी वहीं खड़ी रह गई। ये क्या हुआ? मेरे नबी चलते जा रहे थे और खून साफ करते जा रहे थे। पहले की जुर्रत देख के दूसरे ने भी एक पत्थर उठाया और दे मारा। इसके बाद तो जैसे सभी को जुर्रत हो गई। वो सब एक एक करके निशाना ले लेके मार रहे थे। मेरे नबी ने बचने की कोशिश की, बाजू आगे किए। जैद ने खुद को प्यारे नबी के आगे ढाल बना दिया, मगर पत्थरों की बारिश में वो कहाँ तक ढाल बनते। उनके बस में नहीं था मेरे नबी को बचाना। मेरे नबी लहू लहान हो रहे थे, कपड़ों पे खून, जूतों पे खून, खून बह बह कर पांव तक पहुंच चुका था। ये लड़के अब रास्ते के दोनों अतराफ में आके खड़े हो गए और सभी ने पत्थर उठा लिए। जो ही मेरे नबी एक कदम उठाते, वो पत्थर बरसाते और साथ हंसते मजाक उड़ाते। मैं गम से निढाल हो रही थी, ये कैसा सलूक है, ये कैसा जुल्म। इन्होंने तुम्हें क्या कहा, इनका कसूर सिवाय इसके क्या है कि तुम्हें जन्नत का रास्ता दिखा रहे हैं और जहन्नुम से बचाना चाह रहे हैं। क्या इनका यही कसूर है कि ये तुम्हारे लिए भलाई चाहते हैं, तुम्हारी खैरखाही चाहते हैं। मैं रोती जा रही थी और मेरे नबी का गम और उनकी तकलीफ मुझसे देखी ही जा रही थी। मेरे प्यारे नबी को पत्थर लगने से शदीद दर्द उठ रहा था, कर्ब उनके चेहरे पर नुमाया था। आखिर आपसे मजीद चलने की हिम्मत ना रही तो एक जगह बैठ गए, मगर इन लोगों को कहाँ गवारा हुआ। उनमें से कुछ नौजवान आगे बढ़े और आके मेरे नबी को फिर से बाजू से पकड़ा और खड़ा कर दिया कि अब चलें। फिर मेरे नबी ने जो ही कदम उठाया तो दोबारा वही पत्थरों की बारिश। आपकी तकलीफ देख के भी वो लोग जरा सा भी तरस नहीं खा रहे थे, उल्टा हंस हंस के लोटपोट हो रहे थे। अरे बेवकूफो, तुम क्या जानो ये हस्ती कौन है जिनके लिए इनका एक एक उम्मती कट मरने को तैयार हो जाए, जिनके मुंह मुबारक की झलक देखने को भी इनके उम्मतियों का सैलाब उमड़ आता, जिनके नाम पे, सिर्फ नाम पे भी अगर हर्फ आ जाए तो इनके उम्मती अपना खून बहाने को खड़े हो जाते। तुम इनकी ऐसी बेकदरी कर रहे हो, इनका कलमा एक दिन सारे मशरिक और मगरिब में फैल जाएगा, तुम देखना। मैं रोए जा रही थी और मेरे नबी की ये तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती थी। कोई किसी दुश्मन से भी ऐसा सलूक नहीं करता जैसा इन्होंने अपने हमदर्द के साथ किया। मेरे नबी की टांगे खून में नहा चुकी थी, जूते चिपक गए थे पैरों के साथ, जैद भी पत्थर खा के जख्मी हो चुके थे, मगर ये सफर ऐसा था जो कटके ही नहीं दे रहा था। ये कैसा वक्त था जो सदियों पे मुहित हो गया था। ये लोग पीछा छोड़ ही नहीं रहे थे, ना थकते थे ना पलटते थे। आखिर ये कब रुकेंगे, कहां तक पीछे आएंगे। हम कितने बेबस हो जाते हैं। मेरे नबी ने जैद के साथ कोई 3 मील तक का सफर तय कर लिया था इसी तरह, फिर बैठते तो तब वो उठा देते, फिर पत्थर मारते, फिर वो चलते। 3 मील का सफर आम रास्ते पे करना भी मुश्किल होता है, और कहाँ पत्थरों की बारिश में। सामने एक बाग की 4 दीवारी नजर आने लगी। अब तो कोई और चारा नहीं रह गया था सिवाय इसके कि इस बाग में जाके पनाह ले ली जाए। मेरे नबी और जैद जल्दी से बाग में दाखिल हो गए। इन लोगों का बस नहीं चलता था, वरना शायद बाग में भी आके कुछ जुल्म ढाने की कोशिश करते, मगर अब वो वापस पलट गए। मुझे आज समझ आ रही थी, दीन का रास्ता फूलों की सेज नहीं है, ये तो बड़ा मुश्किल रास्ता है, इसमें अपनी अना का भी सौदा करना पड़ता है, अपनी इज्जत भी गंवानी पड़ती है, अपना मर्तबा और अपना स्टेटस भूल जाना पड़ता है, अपनी जान लगानी पड़ती है, अपना माल देना पड़ता है, सभी कुछ तो लगा देना पड़ता है। मेरे नबी बहुत गमगीन थे, परेशान थे, दर्द में मुब्तला थे, खून बहे जा रहा था। मगर यहाँ पे कोई फर्स्ट एड नहीं थी, कोई डॉक्टर नहीं था, कोई मरहम पट्टी नहीं थी। बाग के मालिक उतबा और शैबा दूर से नजर आ रहे थे, वो खड़े देख रहे थे ये सारा मंजर। ये भी पूरे ऐसे ही थे, मगर उन्होंने मेरे नबी से दुश्मनी की वजह से आपके पास आकर आपका हाल पूछना गवारा नहीं किया। मेरे नबी की जुबान से उस वक्त बड़ी तकलीफ के आलम में, टूटे दिल के साथ ऐसे कुछ अल्फाज निकले जिनमें इतना दर्द था, इतनी बेबसी थी, इतनी कमजोरी और लाचारी का इजहार था। मैंने सुना मेरे नबी आहिस्ता आहिस्ता कह रहे हैं, ऐ अल्लाह, मैं तुझसे अपनी कमजोरी, बेबसी और लोगों के यहाँ अपनी बेवकूती की शिकायत करता हूँ। ऐ सब रहम करने वालों में सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाले, तू तो कमजोरों का रब है, तू मेरा रब है, तू मुझे किसके हवाले करता है? किसी ऐसे के जो मेरे साथ ये रवैया करे, या किसी दुश्मन के जिसे तूने मेरे मामले का मालिक बना दिया? अगर तू मुझसे नाराज नहीं तो मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन तेरी आफियत मेरे लिए बहुत वसीअ है। मैं तेरे चेहरे के उस नूर की पनाह चाहता हूं जिससे अंधेरे रोशन हो जाए और जिससे दुनिया और आखिरत का मामला दुरुस्त हो जाए, कि तुम मुझ पे अपना गजब नाजिल करे या तेरी नाराजगी मुझ पे उतरे। मैं तेरी ही रजा को तलब करता हूं यहां तक कि तू राजी हो जाए और तेरी ही बख्शी हुई तौफीक से नेकी करने और बदी से बचने की ताकत नसीब होती है। आपकी ये गिरियाव जारी सुन के मेरा दिल कट गया। से अपने नबी की ये बेबसी देखी नहीं जाती थी। मैंने आपको मक्का में भी देखा था, आप बेशक वहां पे भी बहुत सताए गए, आपने बहुत कुछ सहा, मगर ऐसा दिन तो कभी नहीं देखा था। आपकी हालत इस वक्त गैर थी, आप खून में नहाए हुए थे और दिल गम से भरा हुआ था, जिस्म भी जख्मों से चूर और दिल भी टूटा हुआ। इसके बावजूद लबों पे कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं, जुबान से तब भी यही बात निकल रही है कि अल्लाह, अगर तू नाराज नहीं तो मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुझसे आफियत का सवाल करता हूं। कितनी अजीम जात है मेरे नबी की। इस वक्त तो कोई भी इंसान होता तो मायूस हो जाता, शिकवे करता, शिकायतें करता, गुस्सा करता, गीला करता, नाराजगी दिखाता, मगर मेरे नबी के रवैये में ऐसी कोई बात नहीं। वो तो अपने रब के आगे और ज्यादा झुक गए थे। उतबा और शैबा जो इस बाग के मालिक थे, मेरे नबी के रिश्तेदार ही लगते थे, मगर उन्होंने रिश्तेदारी का बस इतना ही पास किया कि अपने गुलाम को आवाज दी, अद्दास अंगूर की बेल से खोशा तोड़ के तबाक में रख के उनके पास ले जाओ। मैंने देखा एक गुलाम एक ताजा अंगूर का गोशा तोड़ के मेरे नबी के सामने ला के रखता है। ऐ बदबख्तो, आके पूछ ही लो, आखिर तो तुम्हारे कबीले की है, गैर कौम इनके साथ ये सलूक कर रही है, पर तुम लोगों को जरा शर्म नहीं आती? सिर्फ इतना ही किया? मेरे नबी ने अंगूर तोड़ा, बिस्मिल्लाह पढ़ी और खाने लगे। गुलाम अब्बास ने, अद्दास ने जब बिस्मिल्लाह सुनी तो गौर से आपके चेहरे को देखने लगा, फिर बोला, अल्लाह की कसम, इस शहर में रहने वालों का तो ये कलाम नहीं है। मेरे नबी ने पूछा, है अद्दास, तुम कहाँ के रहने वाले हो और तुम्हारा दीन क्या है? वो बोला, मैं ईसाई हूँ और नैनवा का रहने वाला हूँ। मेरे नबी ने पूछा, अच्छा तो तुम यूनस बिन मत्ता के इलाके से हो? अद्दास एकदम चौंक गया, बोला, आपको यूनुस का कैसे पता? आप कैसे उनके बारे में जानते हैं? अल्लाह की कसम, जब मैं नैनवा में था तो वहां तो 10 अफराद भी उनको नहीं जानते थे, फिर आपको कैसे पता? मेरे नबी ने फरमाया, वो मेरे भाई हैं, वो भी नबी थे और मैं भी नबी हूं। ये सुनना था कि अद्दास तो मेरे नबी के आगे सजदे में गिर गया और आपके दोनों कदम मुबारक चूमने लगा, हालांकि उनसे खून बह रहा था। मेरे नबी ने फरमाया, किसी इंसान के लायक नहीं है कि वो किसी और इंसान को सजदा करे। अद्दास मेरे नबी के कदमों पे झुक गया, आपके सार हाथों पैरों को चूमने लगा। मुझे अपने नबी की यह अदा इतनी पसंद आई, पैगाम पहुंचाने पे अभी अभी इन पे क्या गुजरी थी, मगर तब भी अपने इस मिशन को भूले नहीं, तब भी पैगाम दिया। अगर मैं उनकी जगह होती तो अब तक तौबा कर चुकी होती। ऐसा सलूक अभी अभी जो मेरे साथ होता, उसके बाद मैं तो शायद सारी जिंदगी किसी को पैगाम देने की जुर्रत ना कर पाती, मगर मेरे नबी ने कभी अपने मिशन को पीछे नहीं किया था, कभी उससे पलटे नहीं थे, कभी उसको भूले नहीं थे, हालात ख्वाह कितने ही नामुवाफिक हो, और कभी भी पैगाम पहुंचाने के मामले में मेरे नबी ने किसी को हकीर नहीं समझा, बेअकल समझ के इग्नोर नहीं किया, चाहे वो कोई गुलाम हो या आका हो, गरीब हो या अमीर हो, कम अकल हो या जहीन हो, सबको बराबर पैगाम पहुंचाया, बगैर किसी इम्तियाज के दावत देते रहे। उधर मैंने देखा उतबा शैबा दूर खड़े गौर से ये सारे मंजर देख रहे थे, उनको तो जैसे सकता हो गया था, हैरान और परेशान थे कि ये हो क्या रहा है। अद्दास यहां से उठा और उनकी तरफ चल दिया, मैं भी जल्दी जल्दी उसके पीछे हो ली। उतबा और शैबा ने अद्दास को देखते ही कहा, तेरा सत्यानाश हो, तुझे क्या हो गया कि तू मोहम्मद को सजदा करने लगा और उनके सार हाथ पैर चूमने लगा? हमारे साथ तो तूने कभी ऐसा नहीं किया। अद्दास बोले, वो एक नेक आदमी है, जमीन पर उनसे बेहतर कोई नहीं। उन्होंने मुझे एक रसूल के बारे में खबर दी है जिससे मैं वाकिफ हूं, जिनको अल्लाह ताला ने हमारी तरफ मबऊस किया था, उनका नाम यूनुस था। मैं आज समझ गई कि हिदायत का ताल्लुक स्टेटस से नहीं हुआ करता, ना इससे होता है कि किसी के पास कितना माल है, ना सरदारी से इसका कोई ताल्लुक है। आज ये गुलाम कितना जहीन नजर आ रहा था इन सरदारों के सामने, जो बज़ाहिर बड़ी शानो शौकत रखते थे, मगर कुफर की स्याही ने इनके दिलों को बंद कर दिया था, गरूर और तकब्बुर ने हक से इनको अंधा कर दिया था। इन सबसे तो ये गुलाम अच्छा है, जो इस सोसाइटी में कोई भी मकाम नहीं रखता, इसकी हैसियत इनके यहां एक जानवर से ज्यादा नहीं, मगर अल्लाह ताला के यहाँ इसका मकाम कितना बुलंद है, इसका अंदाजा कौन लगा सकता है? उतबा और शैबा ने जब अद्दास की बात सुनी तो कहकहा लगा के हंसने लगे और बोले, देखो कहीं ये तुम्हें ईसाइयत से ही ना फेर दे। ये धोखेबाज आदमी है, बच के रहना इससे। तुम्हारा दीन वैसे भी इसके दीन से तो बेहतर ही है। मुझे अफसोस हो रहा था इनकी समझ पे। मैं खामोशी से इनके पास से उठकर वापस अपने नबी के पास आई तो देखा आपकी तबीयत अभी भी कुछ ज्यादा ठीक ना थी। जख्म काफी गहरे थे, मगर अब इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि वापसी का सफर शुरू किया जाए। कब तक आखिर यहां बैठे रहते? कुछ देर में ही मेरे प्यारे नबी और जैद ने मक्का की तरफ सफर शुरू कर दिया। अभी ताइफ से कोई 50 किलोमीटर पे ही पहुंचे थे कि कुछ देर ठहरने के लिए एक जगह पर बैठ गए। मैंने देखा मेरे नबी बैठे हैं और आपने सर उठाया तो बादल का एक टुकड़ा कहीं से जाहिर हुआ और प्यारे नबी पे साया करने लगा। उस बादल से एक आवाज आई, ए मोहम्मद, आपका रब आपको सलाम कहता है और आपकी कौम ने आपसे जो सलूक किया है और जो आपको जवाब दिया है, इसको आपका रब अल्लाह अज्जा वजल ने सुन लिया। अब उसने पहाड़ों के फरिश्ते को भेजा है ताकि आप इसे उनके बारे में जो चाहे हुक्म दें। मैं समझ गई ये आवाज यकीनन जिब्राइल की है। फिर एक और आवाज आई, कोई मेरे नबी को सलाम कह रहा था। मेरे नबी ने जवाब दिया। आवाज देने वाला कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी कौम ने आपको जो कुछ कहा है वो यकीनन अल्लाह ताला ने सुन लिया है। मैं पहाड़ों का फरिश्ता हूं, मुझे आपके रब ने आपकी तरफ भेजा है ताकि आप मुझे हुक्म दें। आप जो चाहें हुक्म दे, मैं वैसा ही करूंगा। आप चाहें तो मैं इस कौम को इन दो पहाड़ों के दरमियान कुचल के रख दूं, और अगर आप चाहें तो मैं इन पर पत्थरों की बारिश कर दूं, और अगर आप चाहें तो मैं इनको जमीन में धसा दूं। इससे पहले कि मेरे प्यारे नबी कुछ बोलते, मैंने उछल के कहा, हाँ, इनमें से कोई बाकी नहीं बचना चाहिए। इनको ऐसा मजा चखना चाहिए कि इनकी नस्लें याद करें कि इन्होंने जो सलूक मेरे नबी के साथ किया है, और इनमें से एक-एक सफाक चेहरा मेरी नजरों के सामने घूम गया। उनकी करख्तगी, उनके तंज के तीर, उनके ठट्ठे, उनके हंस हंस के लोटपोट होना, मेरा सीना लग रहा था फट जाएगा। उनका मेरे नबी को लहूलुहान करके बैठने भी ना देना, बार बार चलने पे मजबूर करना, फिर पत्थरों की बारिश करना। उनके वो बेरहम चेहरे मेरी नजरों के सामने घूम रहे थे। उनका वो गुस्सा, उनकी वो नफरत, उनका वो इंतहाई हद तक आमेज सलूक, वो जुमले जिनको मैं सुन भी नहीं पा रही थी। उनकी नजरों में वो कराहियत थी, उनका बस नहीं चल रहा था कि वो मार ही डालेंगे। मेरे तन बदन में ऐसे लग रहा था आग लग गई है। हाँ, अभी तो मौका है उनसे बदला लेने का। अब उनको पता चलेगा मेरे नबी कोई बेसहारा नहीं है, मेरे नबी के साथ उनका रब है। अब ये रोएंगे और इनके घर वाले भी रोएंगे, बहुत हो चुकी। मैं गुस्से की आग में ना जाने क्या क्या सोचे जा रही थी कि मेरे कानों में मेरे नबी की बहुत शफीक आवाज गूंजी। मेरा नबी फरमा रहे थे, ऐ पहाड़ों के फरिश्ते, यकीनन मैं उनके पास जाऊंगा और उनको दावत दूंगा। शायद उनकी कोई नस्ल में ही ऐसे लोग पैदा हो जाएं जो ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लें। ये सुन के हैरत से मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। क्या? मैं बेइख्तियार चीख पड़ी, प्यारे नबी, उन्होंने आपके साथ अभी क्या सलूक किया? आपके तो जिस्म का खून भी अभी खुश्क नहीं हुआ, फिर आप ये कैसे कह सकते? आप इतने अजीम, आपकी शफकत को ये लोग डिजर्व नहीं करते, ये बहुत बेरहम है। इन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया, फिर भी आप इनसे बदला नहीं चाहते। मुझे यकीन नहीं आ रहा था, इतनी मेहरबानी, इतने जख्म सहने के बावजूद इतनी शफकत, मैंने तो कभी किसी को ऐसा करते नहीं देखा। अब बादल से दोबारा आवाज आई, ए नबी, आप वैसे ही हैं जैसे आपके रब ने आपका नाम रखा है, रऊफ और रहीम। वाकई मैं आज मान गई कि आप रऊफ और रहीम हैं अपनी उम्मत के लिए। शायद ये उम्मत तो आपका कर्ज कभी भी ना चुका सके। वालदेन भी अपनी औलाद के लिए वो नहीं करते जैसे, ऐ मेरे नबी, आपने अपनी उम्मत के लिए शफकत, मोहब्बत और रहमत निछावर कर दी। मेरे आंसू बेख्तियार मेरे चेहरे पर बहने लगे, ऐ नबी, हम आपका कर्ज कैसे अदा कर सकेंगे? हजारों दरूद और सलाम आप पे। यहाँ तक आज का एपिसोड मुकम्मल होता है। इंशाअल्लाह ताला कल आगे बात करेंगे इसके ऊपर।
से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने।